सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। सफल बनाना है सबसे बड़ी है सेवा। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, प्रभु की भी पहचान नहीं। प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन अमूल धन, इसे न व्यर्थ गवाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है सबसे बड़ी है सेवा। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, ज्ञान अमृत को पीते हैं। ज्ञानामृत को पीते हैं योगी पावन, जीवन देकर परमानंद लुटाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना बड़ी है सेवा।
ओम शांति। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, जिसे हमने दिन रात दुआओं में मांगा था, जन्म जन्मांतर दुआओं में मांगा था। अब वो बाबा हमारे सम्मुख आ चुका है। सम्मुख आकर उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने सम्मुख आकर हमारे जीवन को खुशबू की तरह महका दिया है। जब हमारे जीवन में दुख शांति की माया की तेज हवाएं चल रही थी, तब उन्होंने सुख शांति से प्रेम से हमारे जीवन को आकर महका दिया है। कैसे महकाया उन्होंने आकर हमारे जीवन को? उन्होंने ज्ञान देकर हमारे जीवन को महका दिया है। कैसे ज्ञान दिया बाबा ने हमें? साकार मुरलियों के द्वारा और अव्यक्त मुरलियों के द्वारा दिया। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसके अंतर्गत हमें जो क्वेश्चन दिया गया है आज का, वो है, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? तो बाबा ने कहा है, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते हैं तो गोल्डन एज की स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे। जैसा समय जैसी सर्कमस्टेंसेस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। बाबा ने कहा मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अगर मोल्ड नहीं होते हैं तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। बताइए कैसा साकार बाबा की विशेषता, बताइए कोई बुजुर्ग बन गए। जैसे आज की मुरली में क्वेश्चन आंसर में बाबा ने आंसर दिया है कि वो ईश्वर स्वयं पिता के रूप में हमें संभालते हैं, अमृत वेले आकर हमें उठाते हैं, वरदानों से सजाते हैं और अपने प्यार से हमें भरपूर करते हैं। फिर टीचर के रूप में हमें वो पढ़ाते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वही वो सद्गुरु के रूप में क्या करते हैं, गुलगुल बनाकर फूल बनाकर हमें साथ ले जाते हैं। हमें तपस्या की वो विधियां बताते हैं जिससे हम गति और सदगति को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। तो बाबा फिर और भी रूप रखता हमारे लिए, कभी हमारा साजन बन जाता है, कभी हमारा बच्चा बन जाता है, कभी हमारा सखा बन जाता है और कभी मित्र भी बन जाता है। खुदा दोस्त बनकर वो हमें कदम कदम पर अलर्ट करता रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सारे संबंधों के रूप में वो हमारे लिए तैयार है, बदल जाता है, हमारा साथ निभाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए। सफलता मूर्त बनने के लिए हमें विशेष कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, मोल्ड होने की क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर बाबा ने आगे आता है कि सेवा में सफल होने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सेवा होती क्या है, सेवा किसे कहा जाता है। तो सेवा होगी हर श्रेष्ठ कर्म, हर कल्याणकारी कर्म, जो हम कल्याण भाव में स्थित होकर स्वयं के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, प्रकृति के हित के लिए और इस संपूर्ण कायनात के सभी के हित के लिए करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म क्या कहलाता है, सेवा कहलाता है। और सबसे बड़ी सेवा होगी कि हम अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं कि मैं कौन। जैसे ही हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं कि मैं आत्मा हूं, वैसे स्वतः ही हमारे अंदर से पावरफुल शक्तिशाली वाइब्रेशन प्रकंपन सारी सृष्टि को फ्लो होने लगते हैं, मिलने लगते हैं और सेवा स्वतः स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम अपने स्वरूप में टिके कैसे। आज भी अमृत वेले हम टिक जाते हैं, अनुमा शाम में भी टिक जाते हैं, वायुमंडल सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे ही हम फील्ड पर आते हैं, कर्म में आते हैं, हम अपने नाम रूप में स्थित होने लगते हैं कि मैं ये कर्म कर रही हूं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल आता है, फिर हमें याद दिलाता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। फिर हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं। तो बाबा ने कल कहा था अपना पोता मेल रखें, हर घंटे का हम अपना पोता मेल रखें कि कितनी देर मेरा अटेंशन रहा है कि मैंने आत्मा बनकर कर्म किया है, उतनी देर क्या हो जाती, हमारी सेवा हो जाती। और सबसे बड़ी सेवा तो यही है, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाना, अशरीरी बन जाना। उसी के लिए बाबा ने इतना खेलपाल, इतना तामझाम रखा हुआ है कि आप सेवाएं करो, बाचा सेवा करो, मनसा करो, आप कर्म सेवा करो। फिर बाबा ने आगे कहा, आगे का हमारा प्रश्न उठता है कि सेवा कितने प्रकार की होती है। तो बाबा ने मुरलियों, अव्यक्त मुरलियों में बताया है कि सबसे हाईएस्ट लेवल की जो सेवा होती है वो है नजर से निहाल करने की सेवा। कि खाली दृष्टि से, जैसे बाबा लास्ट में दृष्टि देता था ना, आगे बोलते नहीं थे बाबा, तो नजर से बाबा ने देखा और हम निहाल हो गए। जैसे बाबा साकार वाणी में बाबा ने कहा है कि नजर से निहाल होना अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलना, अर्थात आप अपने सतोगुणी स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, वो है नजर से निहाल होना। क्योंकि आज तो कलयुग ही पालना हमें मिली है, पहले तो उससे हम निहाल थे, रावण से हम निहाल थे, पर आज तो हमें किससे निहाल होना है, बाबा की नजर से निहाल होना है। और फिर हमें निहाल होकर दूसरों को निहाल करना है। लेकिन हर एक आत्मा नजर से निहाल करने की सेवा नहीं कर सकती है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई और कोई में भी कोई ही वो सेवा कर सकती है। तो आगे प्रश्न उठता है कि वो कौन सी आत्माएं होंगी जो नजर से निहाल करने की सेवा कर सकती है, बताइए। तो बाबा ने कहा है कि जिनकी नजरों में हमेशा वो परमात्मा, वो पिता, वो भगवान बाप समाया हुआ रहता है। वो गीत है ना कि बसे तू जिसकी आंखों में बसाया और नहीं जाता। तो हमारी नजरों में जब वो समाया रहेगा, सदैव समाया रहेगा, बसा रहेगा, तब हम नजर से निहाल करने की सेवा कर पाएंगे। जिनकी नजरों में वो है, तो वो जब हमारी नजरों में समाएगा तो हमारी नजर से कौन, हमारी नजर से दूसरों की तरफ कौन जाएगा, कैसी एनर्जी जाएगी? प्योर एनर्जी जाएगी, शक्तिशाली एनर्जी जाएगी, जो उस आत्मा को भी क्या कर देगी, निहाल कर देगी। खाली देखने मात्र से आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये मासी का घर नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जिनकी दृष्टि सदा रूहानी होगी, जो सदा आत्मा को देखेंगे, खुद के भी सत्य स्वरूप में टिके रहेंगे और दूसरों को भी आत्मा ही देखेंगे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास इनका पक्का होगा। जैसे थोड़े दिन से बाबा मुरलियों में क्या कह रहे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई का आप अभ्यास करें, बच्चे ये पाठ पक्का करो कि आत्मा आत्मा भाई भाई है और मैं तुम्हारा पिता हूं। जब ये पाठ पक्का हो जाएगा तो फिर देह देखते हुए भी हमें देह दिखाई नहीं देगी। क्या दिखाई देगा फिर हमें? अपना सत्य स्वरूप, अपना सत्य संसार फिर हमें दिखाई देगा। तो रूहानी दृष्टि का जिनका सदैव का पक्का अभ्यास रहेगा, जो जिस्म को देखेगी ही नहीं, वो नजर से निहाल करने की सेवा कर पाएगी। फिर अगला है, जिनकी दृष्टि शुभ भावना और शुभ कामना से भरी हुई होगी। कोई भी संबंध संपर्क में आता, कोई व्यक्ति आता, कोई भी आएगा, उनकी दृष्टि में क्या रहेगा, उसके प्रति स्वतः है। वो अपकारी भी होगा तो भी बाबा क्या कहता है, उपकार करो, तुम बच्चों ने भी मेरा बहुत अपकार किया है, फिर भी मैंने आपके ऊपर उपकार किया है ना बाबा ने। हम अभी भी हम भूले करते हैं, श्रीमत वृक्ष ना चाहते हुए कई बार सूक्ष्म में हो जाती है, फिर भी बाबा क्या करता है, हमारे ऊपर उपकार करता है, हमें अपना बनाता है। तो हमें भी अपकारी पर उपकार रखनी है। शुभ भावना शुभ कामना जो सदैव देते रहते हैं, वो नजर से निहाल करने की सेवा कर पाते हैं। फिर अगला है, उनकी दृष्टि बेहद की होगी, तेरे मेरे में नहीं फंसी होगी, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे भाई बहन, नहीं, उनकी दृष्टि बेहद की होगी कि ये सब किसका है, बाबा का, चाहे इस सेंटर पे करूं चाहे उस सेंटर पे करूं। पर मधुबन की एक विशेषता है कि यहां आते हैं तो हम बेहद के हो जाते हैं, यहां बंधते नहीं हैं, पर जैसे ही हम सेंटर पे जाते हैं दृष्टि हमारी पता नहीं क्यों हद में बंधने लगती है। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि मैं मधुबन में रहूं, सेंटर पे ना रहूं। फिर बाबा ने कहा आगे कि शांत दृष्टि होगी, उसमें हलचल नहीं होगी। जब उनकी दृष्टि शांत रहती है, सदैव शांत दृष्टि कब रहेगी, जब मेरे भीतर की अंतः चेतना बिल्कुल शांत होगी। उस शांति में क्या होगा, एक अनहद नाद उनके हृदय में सदैव बजता रहता है। क्या बजेगा? बाबा बाबा और बाबा। दूसरी आत्मा अंदर प्रवेश नहीं करेगी कि परचिंतन परदर्शन, ये दिख रहा वो दिख रहा, नहीं, केवल बाबा। उनकी दृष्टि फिर शांत रहेगी और वो नजर से निहाल करने की सेवा कर पाएगी। फिर अगला पॉइंट है, हमेशा सुख देने वाली दृष्टि होगी। जैसे कहते हैं कि दर्द ना कमाए दुआएं कमाए, क्योंकि दर्द कमा लिया हमने तो क्या होगा, बाबा ने मुरलियों में कहा है, दुखी होकर मरोगे। और यदि हमने सुख कमाया है ना, सुख दिया, तो क्या होगा, सुखी से देह त्याग देंगे। जबकि हमारे ब्रह्मा बाबा की भी जो अंतिम समय की जो मुरली पढ़ी, उसमें बाबा ने कहा कि बाबा का भी कर्म भोग और कर्म योग की अंत में लड़ाई चली थी, उस नंबर वन आत्मा की चली थी, तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारी भी चलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करेंगे, बाबा से शक्ति ले लेकर। फिर बाबा ने अगला कहा है कि जिनकी दृष्टि में व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त होगी। व्यर्थ यहाँ इसलिए लिया कि आप देखिए हमारे चार धाम में से एक धाम किसके लिए है, व्यर्थ से मुक्ति के लिए बनाया। मतलब हमारा, हम बच्चों का कितना व्यर्थ चलता है, ये नहीं कहा क्रोध से मुक्त होना है बच्चे तो इस धाम में आ जाओ, या काम से मुक्त होना है तो इस धाम में आ जाओ, किससे मुक्त होना है, व्यर्थ से मुक्त होना है बच्चे तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। मतलब आप सोचिए हमारा कितना व्यर्थ चलता होगा, तो उस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री हॉल में टिके रहो। क्यों क्यों हिस्ट्री हॉल में हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं हम हिस्ट्री हॉल में व्यर्थ से मुक्त, बताइए। क्योंकि वो जीवंत चित्र हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो चित्र हमसे बातें करते हैं। जैसे बाबा की रूहानी दृष्टि वहां आप देखो तो ऐसा लगता है कि वो आपके अंदर तक झांक रही है, आपको टटोल रही है कि बच्चे अंदर ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, चित्र आपसे बात करते हैं। फिर अगला है, ये तो हो गया नजर से निहाल करने की सेवा, वो आत्माएं कर सकेगी। फिर बाबा हमेशा मुरलियों में मुख्य तीन सेवाओं का उल्लेख करते हैं, कौन कौन सी? मनसा, वाचा और कर्मणा। तो मनसा सेवा करने के लिए हमें मुख्य कौन सी धारणाएं करनी पड़ेगी? तो उसमें पहला पॉइंट है, हमारे मन में, हमारे संकल्पों में न्यारापन हो, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से क्या हो, न्यारापन होना चाहिए, उतना ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। फिर हमारे संकल्पों में स्थिरता हो, ठहराव हो, हलचल वाले संकल्प नहीं हो। यदि हलचल हो रही है कि मेरा ये मेरा वो ठीक हो जाए, हलचल है, आप सेवा दे रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, तो वो मनसा सेवा नहीं लगेगी। आप स्थिर हैं, शांत है, डिटैच है, तो वाइब्रेशन उनको जाके टच करेंगे और आपकी सेवा होगी। फिर अगला पॉइंट है कि मौन, ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। आप जितना मौन रहते हैं, मन का मौन, जितना संकल्पों का मौन होगा, आप उतनी मनसा सेवा कर सकेंगे। इसमें महर्षि रमण जो भक्ति में हुए हैं, उन्होंने बहुत मौन रखते थे वो, तो उनके पास कोई जिज्ञासु आते थे पूछने कि हम सत्य स्वरूप में कैसे टिके, खुद का सत्य का अनुभव हम कैसे करें, तो रमण महर्षि उनसे बोलते थे कि जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, वो कौन है? उसमें टिक जाना ही सत्य स्वरूप में टिकना है। रमण महर्षि जब छोटे थे तो वो एक बार छत पर लेटे हुए थे, ऐसे योग अभ्यास करके लेटे हुए थे, तो सडन एक, बाबा कहते हैं ना, सेकंड की घटना है, उनके जीवन में भी सेकंड की घटना घटित हुई और उनको देह से न्यारेपन का अनुभव हुआ, डिटैचमेंट हुआ और उन्होंने संसार को छोड़ दिया, ईश्वरीय पथ पर चल पड़े वो। फिर अगला पॉइंट है, हमारा मन, हमारे संकल्प श्रेष्ठ स्मृतियों से भरे हुए हों। कौन कौन सी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं जिनसे हमारा मन संकल्प भरा रहे तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं? सबसे ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ स्मृति है परम धाम, हमारा घर, वहां हम जाके टिकते हैं, वहां हमारा बाबा है, वो लाल प्रकाश की दुनिया है, परम साइलेंस है वहां। वहां जाकर ऐसा नहीं कि हमें भान रहेगा कि हम बाबा को निहार रहे हैं, टोटल हम कैसे हो जाते हैं वहां जाकर, पूरी तरह से शांत, परम शांत में हमारी चेतना चली जाती है, वो स्मृति हमें क्या करवा देती है, स्वतः ही मनसा सेवा करा देती। उससे नीचे हम आते हैं तो सूक्ष्म बतन की स्मृतियां हैं, और नीचे आते हैं तो बैकुंठ की स्मृतियां हैं, तो इन स्मृतियों से क्या होगा, स्वतः ही मनसा सेवा होती रहती। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, सतयुग में क्या क्या होगा, चिंतन करें, तो हम जितना चिंतन करेंगे उतनी सेवा क्या हो रही है, हमारे वाइब्रेशन से सेवा हो रही है। फिर अगला पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र निरंतर चलता रहे हमारे मन में। स्वदर्शन चक्र एक तो पांच स्वरूपों का होता है, लेकिन स्व का दर्शन हर कर्म करते हुए, कि अभी बोल भी रहे हैं तो बोलने वाली मैं आत्मा, सुनने वाली आप आत्मा, ये स्व का दर्शन निरंतर चलता रहे तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, साक्षी दृष्टा, तो जो देख रहा है उसके ऊपर अटेंशन रखे, अंदर में जो देख रहा है उसके ऊपर अटेंशन रखकर हम इस कुदरत के खेल को जब देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। उस समय हमारी चेतना कैसी हो जाती है, सत्य में स्थित हो जाती है, जागृत हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है कि हमारी चेतना पर जो अज्ञान के पर्दे पड़े हुए हैं, जो विकारों के पर्दे पड़े हुए हैं, उनको हम जितना हटाते जाएंगे उतना हम मनसा सेवा कर सकते हैं। कैसे अज्ञान के पर्दे से पड़े हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं है, हम ज्ञान में आकर भी कई बार बेसमझ हो जाते हैं, देहधारियों को व्यर्थ चलाने लगते हैं, तो बाबा को धाम बनाना पड़ा कि बच्चे मुक्त, तो वो अज्ञान के पर्दे हटे, वो व्यर्थ से मुक्त हो जाऊं, ऐसा हमें अभ्यास करना है, उसके लिए ज्ञान का चिंतन मनन करना होगा। फिर अगला है वाचा सेवा, वाचा सेवा करने के लिए हमारे अंदर मुख्य कौन सी धारणाएं होनी चाहिए, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है, हमारी वाणी तपस्या के ओज और तेज से भरी हुई होनी चाहिए। इसका भक्ति मार्ग में सबसे अच्छा उदाहरण, जो हम लोग जो भक्ति मार्ग में स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे, सुनते थे, उनकी वाणी देखिए आप कितने ओज तेज से भरी हुई है। ज्ञान में देखते हमारे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों की वाणी आप देखिए कितने ओज तेज से भरी हुई है। क्या कहते हैं वो, उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, है ना। और सबसे ज्यादा ओज तेज से वाणी किसकी भरी हुई है? शिव बाबा की भरी हुई है ना। जब बाबा मुरली चलाता है, बोलता है, तो क्या हो जाता है हमारे अंदर? हम निःशब्द हो जाते हैं, परम मौन में चले जाते हैं। और जब हम मौन में जाते हैं, परम मौन में जाते हैं, तो हमें आवाज की व्यर्थता का बोध होता है कि हम कितना व्यर्थ बोलते रहते हैं। और क्या होता है? हमें देह की व्यर्थता का बोध होता है, दैहिक संबंधों की, इस पुरानी दुनिया की व्यर्थता का बोध हो जाता है कि ये सब व्यर्थ है। अब जब व्यर्थता का बोध होता है तो हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है, सघन वैराग्य जागृत होता है। फिर वो एक भक्ति का गाना है कि साधो ये मुर्दों का देश, पीर मरी है पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, सिर्फ एक राम ना मरी है जिन कारण हम जोगी। सिर्फ वो नहीं मरता है, बाकी सब मरते हैं। जब इस सत्य का बोध होता है, सघन बोध होता है, तो हमारे अंदर क्या प्रकट हो जाता है? वैराग्य। और जब वैराग्य जागता है तो अगली स्टेज आती है, हम क्या बन जाते हैं? योगी बनने लगते हैं। स्वतः योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्रता और योग के गुण हमें स्वतः आने लगते हैं और हम योगी बनने लगते हैं। फिर योगी क्या, योगी कौन योगी बन सकता है, योगी के लक्षण क्या होते हैं? तो योगी जो होता है वो दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। एक होता है कानों से सुनना और एक होता है बिना कानों के सूक्ष्म इंद्रियों से सुनना। एक होता है आंखों से देखना और एक बिना आंखों के देखना भी होता है, जो हम सूक्ष्म आंखों से देखते हैं, जिसका भक्ति में गायन है। कौन सा गायन है भक्ति में हमारा गायन? कौन सा गायन है हमारा भक्ति में, जिसको भगवान के लिए गाया गया है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कन कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो बिना वाणी के ही कैसा है? बड़ा वक्ता है। बिना हाथों के कर्म करता है, करता है ना, ईश्वर दिखता नहीं है, गुप्त है। बाबा गुप्त रूप में भी सब कुछ हमारे अंदर कर दे रहा है। फिर अगला आता है कि अगला पॉइंट है, हमारी वाणी में क्या हो? गंभीरता हो, उथलापन ना हो, है ना। बट ज्ञान को हमने गंभीरता से जब अपने अंदर समाया रहता है तो हमारी वाणी में क्या आ जाती है? गंभीरता आ जाती है। अगला पॉइंट है रमणीकता हो, इतना भी हम गंभीर ना बना दे ज्ञान को, गंभीरता हो लेकिन मध्य में बैलेंस हो। ज्यादा गंभीर बना देंगे तो फिर आत्माएं क्या होने लगती? डिप्रेस होने लगती, भारीपन आने लगेगा उनमें। हमें रमणीकता भी होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमेडी फैक्टर भी, हल्कापन भी डालना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट है प्रकाशित करने वाली वाणी हो, जो हमें हमारे सही मार्ग दिखाए, राह को प्रशस्त करने वाली, किस बच्चे सही ये है गलत ये है। तो प्रकाशित करने वाली वाणी हो, प्रभावित करने वाली वाणी हो कि बाबा का तीर आत्माओं को लगे, बाबा का ज्ञान का प्रभाव आत्माओं पर पड़े। फिर अगला पॉइंट है कि हमारी वाणी मीठी हो, मधुर हो, जो उस शीतलता के सागर का अनुभव कराने वाली हो। फिर है कि अगला, हम कम बोलें और सटीक बोलें। क्या हो जाता ज्ञान में, कई बार हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो बंद ही नहीं होते, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। मुरली क्लास सुना रहे हैं, मुरली के बीच में अपना पॉइंट उठा लिया, लगे हैं आधा घंटा हो गया है, भाई बहन सोच रहे हैं कि बाबा की मुरली कब चलेगी उसी में लगे हैं, बड़ी देख रहे हैं बार बार कि हमको जाना है, काम है। तो फिर क्या करना है हमें? कम बोलना है और सटीक बोलना है, सारपूर्ण बोलना है, वजनदार बोलना है। फिर अगला है कर्मणा सेवा, कर्मणा सेवा करने के लिए हमें मुख्य कौन सी धारणाएं होनी चाहिए? तो उसमें पहला पॉइंट है अव्यक्त भाव से, रूहानियत से भरकर हमें कर्म करना है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं, अव्यक्त भाव में स्थित होकर कर्म करते हैं, तो सेवा स्वतः होती, तब वो सेवा कहलाती है, वो सेवा फिर बंधन नहीं बनती है। फिर है अपनापन और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ कर्म होना चाहिए, क्योंकि आज आत्माओं को क्या चाहिए? आप बाहर सेवा में जाते हैं तो क्या चाहिए आत्माओं को? अपनापन चाहिए है, प्यार चाहिए उनको, इतना सारा ज्ञान भी है, हैवी डोज नहीं देना है, है ना, उनको प्यार से अपनापन दे के, हल्का ज्ञान देकर फिर उनको ज्ञान में निकालना है। फिर अगला है ज्ञान सहन शक्ति और समाने की शक्ति आवश्यक, क्योंकि जब आप कर्मणा सेवा करने जाते हैं या वाचा सेवा भी करने जाते हैं, वाचा और मनसा में इतना नहीं सहन करना पड़ता है समाना जितना कर्मणा सेवा में, क्योंकि आप आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे सहन करना भी पड़ता है और समाना है, लेकिन बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल कर फिर आपको उसे समा लेना है। फिर अगला पॉइंट है अनासक्त होकर कर्म करना है। जब हम अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बनते, हम कर्म के प्रभाव से डिटैच रहते हैं, ना प्रभाव ना लगाव ना झुकाव कुछ नहीं होता है उस कर्म में। फिर अगला है निमित्त भाव से कर्म करना है, ताकि हम दूसरों के अंदर क्या कर सके, बाबा को भर सके। निमित्त जब आप इंस्ट्रूमेंट बन के रहते हैं तो फिर आप दिखाई नहीं देते हो, आपसे फिर कौन दिखाई देता है, बाबा दिखाई देता है। तो हमें निमित्त भाव से कर्म करना है। फिर अगला है त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठकर कर्म करो। जब हम त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठकर कर्म करते हैं, तीनों कालों को देखकर कर्म करते हैं, तो क्या होता है, हमें उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हमें समझ में आता है कि परिस्थिति या व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आया है ना, तीनों कालों को देखा है। फिर अगला है कि समर्पण भाव से कर्म हो। हम जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, समर्पण का होना चाहिए। करें मतलब आप सोचिए बाबा का कितना समर्पण था शिव बाबा के प्रति कि उनका मैं खत्म हो गया था। वो ये कह रहे हैं कि क्या कौन रहा है, शिव बाबा कह रहे हैं मैं उनको बोलूंगा। मतलब समर्पण, तन का समर्पण, मन का, हर चीज का समर्पण बाबा ने किया। फिर बाबा ने कहा एक समर्पण होता उथला उथला, है ना, जिसमें हम चाहते हैं कि हमने समर्पण किया तो बदले में हमें कुछ मिले, चाहे वो सतयुगी पद ही मिले। फिर एक समर्पण होता है हाईएस्ट लेवल का समर्पण, जिसमें चेतना कुछ पाना नहीं चाहती, सब कुछ समर्पित कर देना चाहती, खो देना चाहती, बदले में कुछ नहीं चाहती है, जो हमारे बाबा का समर्पण था कि मैं ना रहूं केवल वो रहे, मैं खत्म। जो जिसका उदाहरण भक्ति में राधा का है, जो नीचे बहती है वो धारा और जो ऊपर बहती है वो राधा, उसकी तरफ बहती रहती है वो सदैव। तो ब्रह्मा बाबा का जो समर्पण था वो सबसे ऊंचा था, है ना, समर्पण की पराकाष्ठा थे बाबा। तो और बाबा के लिए हम क्या कहें, ब्रह्मा बाबा के लिए जब बाबा के पास बैठते हैं तो वाणी क्या हो जाती है, हमारी मौन हो जाती, क्या सीख, क्या क्या सीखे हम उनसे, वो तो जैसे जीवंत पूरी शिव बाबा की किताब है, क्या क्या पढ़ ले इनसे। तो उनके पास जब बैठते हैं हम तो उनको निहारते ही रहते हैं, निहारते हैं ना, बाबा के कमरे में, कुटिया में, हिस्ट्री हॉल, कहीं भी जाएंगे उनको निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, कि निहारते निहारते हम उनके जैसे अंत में ही सही हम संपूर्ण बन जाएंगे। जैसे वो गीत है ना, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, सर्वस्व बारने को दिल ये चाहता है। तो हमें ब्रह्मा बाबा के समान समर्पण भाव से कर्म करना होगा, मम्मा की तरह कर्म करना होगा। जैसे मेरा मधुबन में रुकने का, पहली बार जब आई थी पांडव भवन, ऐसा लगता था कि बस अपने घर आ गए हैं, पिता की बिल्कुल छत्र छाया में आ गए, लौकिक में पिताजी नहीं, उनकी मृत्यु हो गई थी अचानक। तो यहाँ पे आके ऐसी भरपूरता का अनुभव हुआ कि नहीं, एक पिता नहीं, दो दो पिता की छत्र छाया में आ गई, तो यही रहना है। तो यही रहने का मन होता, अभी भी मैं जिद करती हूँ कि मुझे मधुबन में परमानेंटली कुछ सेट कर दो, मुझे वहीं रहना है। तो यहाँ सेवा में भी नहीं रुकने दे रहे थे, एक दिन भी सेवा में नहीं रहने दे रहे थे। तो मेडिटेशन हॉल में मैं योग लगा रही थी, बाबा को भी बहुत बोला, बाबा ने भी नहीं सुना। फिर मैंने मम्मा को बोला कि पिताजी जब किसी बात को पिता नहीं मानता है तो माँ उसको मना लेती कि इस बच्चे को ये काम करने दो, तो आप बाबा को बोलो कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे सेवा करनी है। तो इसी बहाने उस साइलेंस को अपने अंदर हम भर सकते हैं, जो साइलेंस का सागर यहाँ फैला हुआ है। आप कहीं भी बैठे, अभी हम यहाँ भी बैठे हैं तो हमें वो साइलेंस सुनाई देता है जो बिना आवाज का है, जो हमें अंदर से भरता रहता है। तो फिर मम्मा उसी दिन, एक घंटा भी नहीं हुआ, परमिशन हो गई, यहाँ पे सेवा में रुके, आठ दिन रहे, फिर चले गए, फिर आए, अब फिर रुके हुए हैं सेवा में। तो मम्मा भी हमारे सारे काम कर देती हैं, बाबा को मना लेती हैं। इसके अतिरिक्त और मुख्य, ऐसे तो ढेरों धारणा है, सागर भरा हुआ है धारणाओं का सेवा करने के लिए। पवित्रता की धारणा है, नवीनता की धारणा है, वो ज्ञान सुनाते रहेंगे, वो ही सब कुछ करते रहेंगे तो सेवा नहीं कर सकते। रहम भाव होना चाहिए हमारे अंदर। फिर एक संबंध संपर्क की सेवा और होती है। तो जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, तो कैसे कनेक्ट होते हैं, हमारा एक तरीका, हमारा मन उनके मन से कनेक्ट होता है तो हम मन से सेवा कर सकते हैं, जिसे मनसा सेवा कहते हैं। दूसरा तरीका होता है, हम वाणी में आते हैं, वाणी से हम कनेक्ट होकर सेवा कर सकते हैं, जिसे वाचा सेवा कहते हैं। कर्म से कनेक्ट होते हैं हम, जिसे कर्मणा सेवा कहते हैं। फिर इसके अतिरिक्त हम और कैसे कनेक्ट होते हैं, हमारी नजरों ने किसी को देखा तो हम कनेक्ट हो जाते हैं ना उस आत्मा से, तो नजरों से भी हम सेवा कर सकते हैं रूहानी दृष्टि देकर। और कैसे कनेक्ट होते हैं हम? सुनकर कनेक्ट हो जाते हैं सोच के, मन से, मन सा। तो हम किसी को ज्ञान सुनाकर भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके अंदर बाबा की रूहानी खुशबू डाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो पंक्ति बोली थी ना गजल की, कि खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, जो तेज आंधियां तूफान थी विकारों की, कोई राह नहीं दिख रही थी हमें, उसको खोज रहे थे सत्य को, तब वो खुशबू की तरह आया, जिसे हमने दिन रात क्या किया था, दुआओं में मांगा था। अच्छा, ओम शांति।